अल्लाह तेरी रहमत हो, आफियत में रखना, गलती न हो जो पछताऊं, मुझको क्या परखना।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बादु फाऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या हबीब अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या नूर अल्लाह। अल्लाह के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात हैं। और ये जो महीना जारी व सारी है, हुज़ूर सैयदना शेख गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि हुवा शहरुस सलाह, यानी ये दुरूद पढ़ने का महीना है। आइए मैं बड़ी ज़बरदस्त फजीलत आपको सुनाता हूँ। चुनाचे हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा जो कि सैयदुल मुफस्सिरीन हैं, उनसे रिवायत है कि नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है, जो मोमिन जुमे की रात दो रकात इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 25 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, यानी सूरह इखलास पढ़े, फिर ये दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी 1000 मरतबा पढ़े, तो आने वाले जुमा से पहले ख्वाब में मेरी जियारत करेगा सुभान अल्लाह, और जिसने मेरी जियारत की अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला पछतावा लेकर हाजिर हैं। क्यों ये सिलसिला लाया गया, एक मुख्तसर सी हदीस पाक आपको सुनाता हूँ कि सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज कायम करने, ज़कात देने और हर मुसलमान के साथ खैर खाई करने की बैत ये की है। तो ये मुसलमानों की खैर खाई के जज्बे के तहत कि जिनसे कोई गलतियाँ हो चुकी हैं, अब मजीद कोई इन गलतियों के अंदर ना पड़े और उनसे सीखे, यह सिलसिला लेकर हाजिर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले आपको हाइलाइट्स दिखाते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह ताला हजरत की बारगाह में चलते हैं इंशाल्लाह।
हमारे खानदान की एक औरत कैंसर का ट्रीटमेंट करवाते करवाते किडनी फेल हो गई।
मैकेनिक ने बोला मुझे क्या यार आपके लिए इंजन का जो वेट है ना उसमें काम है।
साइकिल में व्हील बहुत लगाई, जैसे ही व्हील आगे गया तो व्हील निकल गया था।
ट्राले वाले ने एकदम ब्रेक लगाई, खुद पीछे से जाके लग गए।
आपने ये मुख्तलिफ वीडियोस देखी, सबसे पहले कुछ इब्तदाई इंट्रोडक्टरी बात निगरान शुरा से हम करते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह तबारक व तआला आपको पहली वीडियो दिखाते हैं। जी हुजूर।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमी नबीयीन। अल्लाह पाक खैर आफियत का मामला फरमाए। जैसे कि आपने इब्तदा में कह दिया है कि इस प्रोग्राम को शुरू करने की एक वजह यह है कि जिन्होंने कहीं कोई अपनी ज़िंदगी में ऐसा अमल किया जिसकी वजह से आज उन्हें किसी भी हवाले से रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस हो रहा है इन्हें, तो हम उनकी उन बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके अपने जो ये भी एक लाइफ एक्सपीरियंस होता है, अगरचे कुछ एक्सपीरियंस नेगेटिव होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस पॉजिटिव होते हैं,
जी बिल्कुल,
लेकिन एक्सपीरियंस फिर भी एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा तजर्बा होता है, और इंसान की अक्लमंदी में यह है कि वो अपने तजर्बा से फ़ायदा उठाए। और अगर कोई भूल या गलती ऐसी हो चुकी है तो आइंदा वो गलती ना हो। देखिए गलती होना, मिस्टेक होना, अगरचे ये भी मतलब किससे बचने की पूरी कोशिश की जाए, लेकिन ये इंसान से ज़िंदगी में हो जाती है गलती, फैसले गलत हो जाते हैं, कुछ तज़िया गलत हो जाता है, कोई बात गलत पता चल जाती है, तो कुछ बंदा उसके अगेंस्ट कुछ गलत चीज़ कर बैठता है। मगर अक्लमंदी में से ये है कि बंदा गलती से सीखे, अब दोबारा उसी तरह की गलती रिपीट ना होने दे,
सही,
तो ये ज़रूरी होता है। तो इस तरह कुछ चीज़ें हम आपके साथ लाते हैं, शेयर करते हैं, और उस पर आपकी कॉल्स भी आ जाती हैं, जैसे लास्ट प्रोग्राम में भी आई, तो उसको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर ले सके तो लेंगे, और ये कि उनसे क्या हमने लिया, क्या सीखा, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा ख्याल आगे बढ़ते हैं।
जी बिल्कुल। सबसे पहली जो वीडियो है, साइकिल पर हादसा, मजूरी दे गया, क्या हुआ देखिए।
मेरा नाम आसिम अहमद है। 1995 में एक साइकिल के हादसे से ये माजूरी में आ गया हूँ। साइकिल में व्हील बहुत लगाई, जिसकी वजह से जो है ना उसका आगे का चिमटा जो है वो ऐसा ऐसा टूट रहा था। जब मैं अपने छोटे भाई को लेकर आ रहा था स्कूल से, एक गड़ा नुमा था जिसमें जैसे ही व्हील आगे गया है तो व्हील निकल गया था। ऐसा झटका पड़ा जिससे मेरे हिप जॉइंट के मोहरे जो है वो डिसबैलेंस हो गए। साइकिल के हादसे से ये माजूरी में आना बहुत तकलीफ में आ गया था। एक हफ्ते बाद ही मैं बिस्तर पे आ गया, मैं इस माजूरी में आ गया। मेरी भी एक सोच थी, मैं मैट्रिक करता, इंटर करता, आगे अपनी पढ़ाई को अप करता, कुछ ना कुछ अपने माँ बाप की खिदमत करता, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सका। मेरी ट्रीटमेंट कई जगह हुई, जितने भी डॉक्टर मिले एज ए एक्सपेरिमेंट ही करते रहे, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल डैमेज हो गया। मैं कम से कम बेड पे 7 साल तक रहा हूँ, मैं जब इस कंडीशन में भी आया हूँ माजूरी की, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। घर वालों की सपोर्ट, दोस्तों की सपोर्ट रही, जिससे मैंने एक स्पेशल बाइक बनाई, कुछ अदरवाइज कोर्सेस किए। जब से बाइक हुई है ना तो मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। मैंने कोशिश ये की है कि जो भी काम करना है अपने बलबूते पे करना, इंसान कभी अपनी विल पावर को गिरने ना दे। अल्लाह ने ये कुदरती अमल इंसान के अंदर ये दिया हुआ है। जैसे मैंने गलती की कि मैंने विली मार के साइकिल से चिमटा टूटना शुरू हुआ और एक दिन वो टूट गया, वो गलती मैंने जो की है वो बराए मेहरबानी आप लोग ना करें। साइकिल चलाएं या बाइक चलाएं, बड़े तरीके से एहतियात से चलाएं, जज्बात में ना आए। अगर उस जज्बात में आके अगर आप कोई गलती कर जाएंगे तो आपको मेरी तरह माजूरी में आना पड़ जाएगा, जिससे आपको पछतावा होगा। आज जो मुझे पछतावा हो रहा है।
अल्लाह अकबर,
या अल्लाह रहम कर। पहले जी
ये इरशाद फरमाइए कि बाइक और साइकिल, यानी ये दो ऐसी चीजें हैं, साइकिल उन जगहों पर भी चलाई जाती है कि जहाँ पे बाइक, जिन मुल्कों में बाइक का रुझान नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये इरशाद फरमाएं कि आप क्या फरमाते हैं कि बाइक और साइकिल ये चलाते हुए क्या क्या एहतियातें की जाए।
देखिए, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इन भाई से साथ कुछ हमदर्दी कर लूँ।
जी बिल्कुल,
हमदर्दी भी कर लूँ और कुछ तसल्ली भी दे दूँ।
सही,
हमदर्दी ये कि जो इस कैफियत में ये है, अल्लाह पाक ने हिम्मत और सब्र अता फरमाया।
आमीन आमीन।
और मैंने दावत इस्लामी के दीनी माहौल के करीब आने की दावत दूंगा, और अपने आप को जहाँ माशाल्लाह इन्होंने कहा है कि एक अल्लाह ने इनको एक खुद ताकत दी, एक विलिंग दी, एक अच्छे अंदाज से इन्होंने खुद को बिस्तर पर पड़े नहीं रहने दिया, बल्कि ये उठे और उठकर ये चल पड़े और अपने आप को इन्होंने एक फाल पर एक अंदाज में लेकर एक्टिव किया इन्होंने खुद को। तो आखरत की तैयारी की तरफ भी मजीद आना चाहिए, और अल्लाह करे कि ये मतलब उस तरह के नेक आमाल भी बजा लाते हों जिसका यहाँ जिक्र नहीं है। अलबत्ता ये कि मस्जिद में आना, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना, फिर और मजीद इसमें नेकी की दावत के काम किए जा सकते हैं। और मैं इनके बिहाब पर उन इस्लामी भाइयों को, उन देखने सुनने वालों को एक मैसेज दूंगा कि अगर कोई खुदा ना करता हादसा हो जाए तो बिस्तर पर पड़े पड़े अपने आप को किसी और के डिपेंड पर डाल लेने से बेहतर है कि आदमी उठे और उठकर कोई स्किल को, इन्होंने 2-3 बातें जो बयान की कि मैंने एक स्पेशल मोटरसाइकिल तैयार करवाई और कुछ स्किल्स सीखी, यानी कुछ महारतें सीखी, यानी कुछ ना कुछ इन्होंने फन सीखा होगा, कुछ हुनर सीखे होंगे इन्होंने उस वक्त कि मैं क्यों मतलब के मांग कर ज़िंदगी गुजारूँ, खुददारी के साथ ज़िंदगी गुजारने को इन्होंने तरजीह दी। और 7 साल बेड पर रहना ये आसान नहीं होता, उस दौरान जो जो इंसान पर गुजरती है गुजरती है। तो अलबत्ता ये कि अल्लाह पाक इनको मजीद हिम्मत दे, सब्र दे, और शुक्र का पहलू भी माशाल्लाह इसमें पिछले मिले सुन्नत ने जो अपने वॉइस मैसेज में जो हमें बताया था कि 2 पाँव पर परेशानी आई है, तो अल्लाह पाक ने 2 हाथ सलामत रखे हैं, अल्लाह पाक ने आंखें सलामत रखी हैं, अल्लाह पाक ने अक्ल को सलामत रखा है, फिर अल्लाह पाक ही हिम्मत देता है, अल्लाह पाक की ताकत देता है, सब शुक्र के पहलू भी हमारे साथ रहते हैं। अलबत्ता ये कि अब चूँकि हम अपने उस की तरफ आते हैं कि जो आपने सवाल किया कि जो एक तो इन्होंने खुद कह दिया कि बिल, यानी कि एक टायर पर जो मतलब के चलाते चलाते उठालते हैं तो इसको बिली मारना कहते हैं साइकिल पर, और मोटरसाइकिल पर उसको वन व्हीलिंग का भी नाम दिया जाता है। तो जब आप ये मतलब करते हैं ना, तो जब टायर तेजी से गिरता है ना फर्श पर, तो इसके दो इसके जो पिलर होते हैं साइडों में
सही,
वो पिलर इसके वीक होना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं चलता
सही।
और अब बड़े बड़े इन्होंने मतलब के टायर के झटके लगे होंगे, लेकिन कोई एक का झटका बाकी रह गया और वो एक झटका फिर ऐसा हुआ कि वो उस चीज टूट गई। एक इंग्लिश का एक मुहावरा है जिसमें इसको उर्दू में यूं कहते हैं कि एक तिनके ने ऊंट की कमर तोड़ दी।
अल्लाह अल्लाह।
तिनका जैसे माचिस की तिल्ली होती है, एक तिनका ऊंट की कमर तोड़ देता है। इसके पीछे लॉजिक ये है इस मुहावरे के पीछे कि उस तिनके ने ऊंट की कमर तोड़ दी, तो यार एक तिनका ऊंट की कमर कैसे तोड़ सकता, तिनके का वजन कितना, असल में तिनके पर ऊंट की कमर पर ऑलरेडी इतना वजन डल चुका था कि अब बस करीब था कि इसकी कमर टूटती। एक सिर्फ माचिस की तिल्ली या तिनका रखा
और वो बैठ गया,
स्टिक रखी छोटी सी और वो कमर ठाक करके टूटी। ये एक समझाने के लिए कि बातों का इतनी चीजें वो ओवरलोड होती चली जाती है कि फिर एक हल्की सी चोट लगती है और बहुत कुछ चीजें बिखर जाती हैं। तो मोटरसाइकिल की जो वन व्हीलिंग करने वाले हैं, इसमें उनके लिए बड़ा सबक और इबरत है। जो साइकिल पर इस तरह चलाते हम देखते रहते हैं,
करते रहते हैं, दूसरा ये कि उनको कभी समझाए ना कि बेटा आप नहीं करो, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप। तो कहते हैं कि क्या होगा मौलाना साहब, मर जाएंगे ना, इसीलिए तो कर रहे हैं, करते करते निकल गए।
अब तो ये असल में बस वो ना समझी वाली बातें हैं। अगर समझाया जाए तो शायद हो सकता है इनकी समझ में आ जाए कि नहीं ये पता ही नहीं है कि ये जो तकलीफ है ना इसको कहते क्या है। ये मतलब ये बस एक अपनी उम्र का भी तकाजा होता है, ना समझी का भी एक मामला होता है, और कोई समझाने वाले नहीं होते। तो अगर इस तरह के प्रोग्राम ये देख ले या इन तक इस तरह की बातें पहुँचा दी जाए, हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई हम इसलिए रहे हैं कि भाई अब देखें कि क्या कैफियत हो गई। खुद ये अपनी बात को खुद ही इजहार कर रहे हैं ना, जो काम मैंने किया वो काम आप मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो पछतावा मुझे हो रहा है वो पछतावा आपको। अगर ये इन्होंने खुद को काफ़ी सेटल करने की कोशिश की है, लेकिन जो वीकनेस जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और जो एक बात जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है वो तो डेफिनेटली आ चुकी है ना। तो इसमें बस ये है कि आप ऐसा कोई अमल ही ना करें जो अननेचुरल है। एक तमीज़ से साइकिल चलाएं, तमीज़ से मोटरसाइकिल चलाएं और एक तरफ होके चलाएं। ये यानी कि ये वो सर्कस के मैदान थोड़ी है, आम सड़कें। अच्छा, बाज़ मैंने देखा सड़कों पर जो मोटरसाइकिल चलाने वाले, जैसे कि ये वाकई रेसिंग ट्रैक पर जैसे मोटरसाइकिल, देखिए रेसिंग ट्रैक एक अलग है, वहाँ से सब लोग एक ही तरफ से गाड़ी चला रहे हैं, कोई आने का नहीं है, कोई जाने का नहीं है, कोई साइड से नहीं आया, कोई सर्विस रोड से नहीं आया, कोई सिग्नल नहीं, कुछ भी नहीं है, एक ट्रैक बना हुआ है। सबको पता है कि यहाँ पर एक गेम, एक खेल है, और वो उसकी उन्होंने महारत हासिल की हुई है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए अभी ये मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन ये कि ये खेल है, इसमें लोग लगे। अब आप उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपने सड़क के ऊपर जहाँ पर इतनी कारें चल रही हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ट्रकों का इतना आना जाना, रास्ते पे मिट्टी पड़ी हुई होती है, ऑयल पड़ा हुआ होता है, पानी पड़ा हुआ होता है, नॉर्मल चलते चलते मोटरसाइकिल स्लिप हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर कर्तव्य दिखाने बैठेंगे, वन व्हीलिंग करेंगे और बिल्ली मारना शुरू कर देंगे, तो फिर बनेगा क्या। और फिर नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी हेड इंजरी है ना, हेड इंजरी, सर की चोट, ये बड़ी खतरनाक होती है, यानी आपको कोमा में ले जाती है, आपको कई कई महीनों तक, एक अरसे तक वो आपको बिस्तर पर बैठा देती है। और अल्लाह ना करे बाद जिस्म के ऐसे हिस्से, अल्लाह ना करे माजूर होने का डर होता है कि फिर बंदा उठता ही नहीं है, फालिज हो जाता है वो, मतलब बेड पर आ जाता है, और फिर बेड स्वेलिंग एक अलग फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि जो बिल्कुल इंसान को कहीं
बेड के हवाले से। ऐसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे फरमाया, कोई ऐसा तजुर्बा आपको रहा हो या इस बारे में कि ये बेड पर जो जिंदगी होती है क्या क्या गुजरती है, क्या क्या चीजें, बंदा
अल्लाह पाक आफियत का मामला फरमाए, अल्लाह पाक आफियत दे, आफियत दे, आफियत दे, बंदा चलता फिरता रहे। यानी मैं अमीर अहले सुन्नत कि अगर मैं आपको आपका तजर्बा और आपकी हिम्मत और आपकी बातें अगर मैं शेयर करूं, एक बहुत जहां दीदा शख्सियत है, तो आप खुद को बेड पर ज्यादा देर रखने को पसंद नहीं करते। नाउ ही 75 ईयर, 75 साल की इनकी उम्र है, अल्लाह इनको सलामत रखे, हिम्मत तंदुरुस्ती दे। वही खुद बाजों का शेयर करते हैं जब इस्लाम, ہوتا ہے ہمدردی ہوتی ہے تھوڑا آرام کر لیتا. آپ فرماتے نہیں میں بیڈ پر نہیں آنا چاہتا. پھر آپ وہ بیڈ کے اوپر سے آنے کی اس طرح کے آپ سائڈ افیکٹ ہے, مطلب کیا فائدہ ہے؟ بندہ چلتا پھرتا رہے چلتا پھرتا رہے. لیکن بس اللہ کرے کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے.
آمین آمین.
پھر وہ ایک عجیب سی زندگی ہو جاتی ہے کہ بندہ پھر بیڈ پہ چلا جاتا ہے, پھر جو پرابلم ہوتے ہیں نا, پھر جو اسکن ڈیزیز ہو جاتی ہیں اور بہت سارے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں.
تو پچھلے سلسلے میں بھی آپ نے جو بیڈ سول کے بارے میں کہا تھا کہ بیڈ سول
یہ ساری جھیل ہے نا, کمر اسکن وغیرہ آپ کی بیک سائڈ ہے, وہ پوری ایک مطلب کہ عجیب پڑے پڑے ایک بیڈ کی اپنی ہیٹ ہے اور آپ بالکل یوں لیٹے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کی پیچھے کا سارا حصہ جو ہے نا وہ
بیڈ سولنگ جی جی
وہ عجیب ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب آپ بیٹھ بھی نہیں سک رہے,
صحیح
کروٹ بھی نہیں لے سک رہے اور اب لیٹ بھی نہیں سک رہے.
اللہ اللہ.
تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ڈاکٹر دیکھیں, اگر ایسا خدا نہ کرتا کسی مریض کے ساتھ ہے تو اس کو بیڈ سول نہ ہو, اس کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں کہ اگر اللہ نہ کرے وہ لیٹ ہی رہ گئے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا. کوئی ایسا آئنٹمنٹ ہو, کوئی ایسی مساج ہو, کوئی ایسا لوشن ہو یا بیڈ کی کوئی ایسی
ایکسرسائزز
کوالٹی ہو, کوئی ایسی چیز ہو جو ڈاکٹر سے ایڈوائس لے لی جائے. کہ کئی ایسے ہیں مریض جو بےچارے بیڈ پر ہیں, مگر ہو سکتا ہے کہ ان کا بیہائنڈ دا بیڈ سویلنگ نہ ہو, یہ بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہو اور یہ بچت ہو جائے. اللہ پاک سے معافیت کا سوال کرتے ہیں. تاہم اس طرح کے حادثات, اس طرح کے واقعہ سے بچنے کے لیے وہ میرے امیر سے فرماتے ہیں نا کہ محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے, احتیاط کریں. اور میں نے پہلے بھی پروگرام میں عرض کی ہے کہ اپنی موٹر سائیکل کو سائڈ پہ چلائیں مہربانی کر کے. تو ان شاء اللہ ایک بات, ایک موٹر سائیکل کا اپنا ٹریک ہے, وہاں چلائیں. دنیا میں موٹر سائیکلیں چلتی ہیں اور ایک طریقے کار کے تحت بھی چلتی ہیں. اب ہیلمیٹ کے ساتھ چلائیں, اب اس سے بہتر کیا ہوگا کہ آپ ہیلمیٹ پہنیں. اب ہیلمیٹ بھی نہیں پہنتے نا, ہم کیا کریں؟
اچھا یہ بھی معاملہ ہے. اور ہیلمیٹ سے بعض اوقات کافی بچت بھی ہو جاتی ہے.
ہیلمیٹ سے بہت بچت ہو چاہیے. میں نے کہا نا ہیڈ انجری سے بندہ بچ جاتا ہے. میں نے پاکستان کے باہر موٹر سائیکل چلانے والوں کو ہیلمیٹ,
ہاں
یہ جو ایلبو ہے نا
جی جی اس پہ جو
ایلبو کور اور نی ٹخنے جو ہے نا نی کور, یعنی کہ ٹخنے کے اوپر باقاعدہ کور ہے. یہ بات میں دیکھ رہا ہوں, یہ ایک نہیں, یہ سمجھے کہ یہ مینڈیٹری ہو, مطلب کہ لازمی ہوگا موٹر سائیکل چلانے کے لیے. ادروائز ہو سکتا ہے کہ چالان ہو جاتا ہو. یعنی کہ گھٹنے کور کرتے ہیں, باقاعدہ پلاسٹک کا ایک باقاعدہ ایک کور ہوتا ہے, اور ایلبو کا کور ہوتا ہے, اور ہیلمیٹ ہوتا ہے, اور ہاتھ میں گلفس بھی ہوتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے. اور سائڈ کے میرر لازمی طور پہ ان کے ہونے چاہیے, انڈیکیٹر ان کا کام کرنا چاہیے, اور موٹر سائیکل کو اس کی لائن میں چلانا چاہیے. اگر ایسا ہو تو پھر اللہ نہ کرے اگر حادثہ ہو نا, تو آپ کے جسم کے کئی حصے فوٹ سے معذور ہونے سے بچ سکتے ہیں.
صحیح فرق. اچھا حضور, گزارش یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کہی کہ مختلف ڈاکٹرز نے مجھ پر تجربہ کیا.
اصل میں یہ مریض کے ایک اپنے تبصرے ہوتے ہیں. اب دیکھ, اگر واقعی وہ ڈاکٹر ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ میں اپنے مریض کو صحیح کر دوں, میرا مریض مجھ سے صحیح ہو کر جائے. ڈیفینیٹلی اس کی ایک میڈیکلی جو پروفیشن ہے یہ خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی پرفارمنس جتنی اچھی ہوگی اسی طرح اس کی طرف پیشنٹ کا جو رجحان ہے وہ آئے گا. تو یہ ہے. لیکن اب اگر اللہ نہ کرے کوئی ادھر ادھر بندہ ہاتھ پیر مار دیتا ہے, لاسٹ ٹائم پورا میں جیسا میں بات کی تھی, تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے. تو لیکن ڈاکٹر کے بارے میں بدگمانی کرنے سے کچھ فائدہ نہیں. کہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان سے ان کی کیا مراد ہے. اب ہم خالی سن کر کیسے مراد قائم کر لیں.
اچھا تو کالز ہیں جی.
اطہرہ تاریخ لمبات سے عرض کر رہا ہوں. پچھتاوا جو پروگرام ہے بہت زبردست ہے, اس سے ہمیں مختلف قسم کی عبرت بھی حاصل ہو رہی ہے, رہنمائی اور گائیڈ لائنز بھی مل رہی ہے, اور گھروں میں اور بالخصوص اپنی فیملی کے ساتھ احتیاط کا پہلو لے کر چلنے میں الحمدللہ بہت زبردست یہ معاونت والا پروگرام ہے. نگرانی شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ بعض چیزیں ہم کر تو جاتے ہیں لیکن اس کے ریزلٹس پہ نظر نہیں ہوتی, تو کام کرتے ہوئے کس طرح اس کے ریزلٹس پہ نظر رکھی جائے, یہ رہنمائی ارشاد فرما دیں.
دیکھیں, ریزلٹ پر نظر رکھنے کے لیے ایک بیسٹ وے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کام کسی نے کیا ہے تو اس سے مشورہ کر لیا جائے. تجربہ کار یا جو اس سے گزرا ہو نا اس سے مشورہ کیا جائے. اور ایکسپیرینس ہولڈر لوگوں کی معاشرے میں ایسا نہیں کہ کمی ہے, مل جاتے ہیں اور اس سے اچھے مشورے مل جاتے ہیں. تو ہم ایک کام کرنے جا رہے ہیں, اب انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں یا کوئی اور چیز خریدنے جاتے ہیں, تو ایک ایکسپیرینس پرسن سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں, یہ میں کروں یا نہ کروں. जैसे ट्रीटमेंट करवाना होता तो ट्रीटमेंट भी हमेशा एक, हमने तो ये सुना है बल्कि ये बात सच्ची बात यह कि समझ में भी आती है कि फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन की तरफ जाना है। स्पेशली जो डॉक्टर ऑपरेशन का कहे तो फर्स्ट ओपिनियन एक डॉक्टर का ओपिनियन है, डॉक्टर डॉक्टर है, इसके ओपिनियन डेफिनेट गलत हो भी सकता है। तो सेकंड इसी तरह के अच्छे डॉक्टर से कोई मशवरा कर लिया जाए, तो इस तरह मतलब कि अगर मुख्तलिफ ओपिनियन जमा कर लिए जाए ना, मुख्तलिफ राय जमा कर ली जाए, मशवरे जमा कर लिए जाए, तो समटाइम ये होता है कि हम नुकसान से हो सकता है बच जाए। लेकिन देखिए असल तो आपको फैसला करना होता है, कोई मशवरे देते हैं लोग, आप पर मुझ पर कुछ मुसलत नहीं करते, मुसलत करने वाला मशवरा होता ही नहीं है, वो तो फिर ऑर्डर होता है। लोग मशवरे देते हैं हमें, आप चंद मशवरे जमा करके फिर एक डिसीजन लेना होता है, तो वो डिसीजन लेते वक्त अल्लाह पाक से दुआ भी करें, अल्लाह पाक से इल्तिजा करें और कि अल्लाह हमें नुकसान से बचाए। और इसमें बाज़ोकात क्या बल्कि बेहतर तो है कि बंदा इस्तिखारे की तरफ जाए, कि हदीस पाक में जिस तरह इस्तिखारे का बयान किया गया है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को इस्तिखारे की तरफ जाने का इरशाद फरमाया करते, तो इस्तिखारा भी किया जा सकता है। तो यूँ मतलब कि इस तरह के कुछ हम इकदाम करेंगे तो शायद हो सकता है कि हम किसी भी नुकसान से बचकर फ़ायदे की तरफ चले जाएँ।
अच्छा, इसमें मशवरे का आपने फरमाया, बाज़ोकात ये होता है कि मशवरा तो अच्छा होता है मगर फ़ायदा नहीं होता या नुकसान हो जाता है, अब क्या करें जिसने मशवरा दिया था?
देखिए मशवरे देने वाले ने अपने तौर पर मशवरा दिया जो उसके वाइज लाइफ का एक्सपीरियंस था, लेकिन मशवरा जो भी देना दुरुस्त है पहले तो ये बात, वरना मना कर दे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब मशवरा जिसे लिया जाए उसको दुरुस्त मशवरा देना वाजिब है।
सही,
तो दुरुस्त मशवरा दे, और अब देख उसे एक मशवरा दिया आपको करने पर पाबंद तो नहीं किया था, फिर मैं आपसे मशवरा करूँगा, उनसे लूँगा, उनसे राय लूँगा, तो आखिर डिसीजन तो मैंने लेना है ना।
सही,
तो ऐसा हो भी जाता है, इस पर कोई हरज नहीं है। अब नफे नुकसान तो यार जिंदगी का हिस्सा ना, देर इज ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी के सारे फैसले नफा पहुँचाएं ये नहीं होता। हम जैसे इंसान, हम जैसे लोग, इनकी अकल कामिल थोड़ी होती है, ऐसे कोई तो अकल कुल थोड़ी है।
सही,
हमारे फैसले बसा औकात नुकसान भी दे जाते हैं, हमारे फैसले फायदा भी दे जाते हैं, तो ये तो देर इज ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसको मतलब आप कोई अनहोनी तो नहीं ना कहेंगे।
सही फरमाया जी, दूसरी कॉल लेते हैं।
माशाल्लाह से पछतावा सिलसिला बहुत ही प्यारा चल रहा है। निगरान शुरा आपसे ये सवाल है, आजकल ये भी देखा जाता है कि दोस्तों का एक गैंग होता है तो मोटरसाइकिलों पर एक व्हीलिंग करते हैं, किसी के साथ हादसा पेश आ जाता है तो फिर पछतावा होता है कि आज काश हमने ये वन व्हीलिंग ना करी होती। इस बारे में मतने फूलट साहब फरमाएं कि गलत काम क्यों किया जाए जिससे पछतावा हो।
इस तरह के चीज़ें इससे पहले भी हमने मदनी चैनल पर बताई भी हैं, मेरे सुन्नत ने बताई है, मदनी मुजाकरे में भी समझाने की कोशिश की है और हमने कुछ वीडियोस भी बताई है कि वाकई गैदरिंग्स हैं, ग्रुप्स हैं जो हैवी बाइक और मुख्तलिफ अंदाज से सड़कों पर आते हैं और स्पेशली जो वीकेंड होता है उसमें ये काफ़ी इनका एक ग्रुप निकलता है और दुनिया भर में मैंने जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ ऐसा जो हमारे मुल्क का प्रॉब्लम नहीं है, और फिर वो बड़ी हैवी बाइक पर ये बाकायदा एक इनका एक होता है, घूमते हैं और उसमें फिर वो रेसे लगाते हैं और फिर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें अल्लाह ना करे कोई स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, चोटें लग जाती है, फिर एक दूसरे को अफसोस करते हैं, लेकिन देखा ही है रुकता वुकता है ही नहीं, बस चल रही होती है।
एक नौजवान एक जिस तरह बता रहे हैं, एक गैदरिंग ऐसे जा रही थी, एक लड़के ने लेट के बाइक चलाई सीधा गाड़ी के अंदर, उसी वक्त इंतकाल।
अल्लाह 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 खैर करे, अल्लाह खैर। माँ बाप को देखे अपने माँ बाप,
अल्लाह अल्लाह,
आपके वालिदैन ने आपको बड़ा इसलिए थोड़ी किया था कि आप इस तरह मतलब के बेएहतियाती के साथ,
ये बड़ी जबरदस्त
उनकी जिंदगी की इस पूरी कमाई, आप वालिदैन, आपको पता है माँ बाप के इन्वेस्टमेंट हो, आप पर आपकी वालिदैन ने इन्वेस्ट की हुई है।
सही,
आज आप बड़े हो गए हैं, आज आपको वालिदैन का सहारा बनना है, इनके बुढ़ापे का सहारा बनना है, इनके अब पाँव में इतनी ताकत नहीं देंगे, कंधों में इतनी ताकत नहीं देंगे, अब आपको जन्म उधार, अपने वालिदैन को देखें और अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस तरह के गलत कामों से बाहर आए, और ये कानूनन भी इसकी इजाज़त नहीं है और कई सूरतों में शरण भी इसकी इजाज़त नहीं है, कई सूरतें इसकी शरण नाजायज़ और हराम की हैं, ये मतलब वो है ना कि अपने हाथों अपनी जानों को हलाकत पे ना डालो, वला तुल्कु भी अईदीकुम इला तहलुका, और अपने हाथों अपनी जानों को हलाकत पे ना डालो, तो ये मतलब मैंने बाकायदा इस पर एक फतवा मेरे सामने से गुजरा था कि ये इसकी इजाज़त नहीं है, ये आम तौर पे जो हम कर रहे होते हैं, تو یہ خود ناجائز اور حرام کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، اور پھر والدین، پھر زندگی بھر کی محتاجی، لاچاری، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔
اللہ حضرت، ایسا ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہے، اس میں کچھ الگ ٹائپ کے معاملات ہیں، وہ بھی آئیے ویڈیو دکھا۔
میرا بیٹا عبد الباسط 14 اکتوبر کو مدرسے میں جا رہا تھا، ٹرالے والے نے ایک دم بریک لگائی، ان کی بے احتیاطی سمجھ لیں، ان سے غفلت ہو گئی، یہ خود پیچھے سے جا کر لگ گئے اس کے اندر۔ تو راستے میں جاتے ہوئے یہ دونوں بھائی تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بائک سے، چباڑا بھی فیکچر ہو گیا تھا سر، ابھی بھی اس کا آپریٹ ہوا ہے چباڑے کا، ابھی بھی ان کا منہ جو اندر سے باندھا ہوا، بالکل منہ نہیں کھول سکتا، کوئی چیز کھا پی نہیں سکتا، لیکوڈ چیز، پانی، جوس اور جکھنی وغیرہ پی سکتے ہیں، یہ ایک مہینے کے لیے بالکل مکمل طور پہ اس کا بات بھی نہیں کر سکیں گے، ہوگی مسٹیک، ہوگی غلطی، اب یہ غلطیوں کا ہمیں وہ بھگتنا پڑ رہا ہے، پچھتاوا بھی ہو رہا ہے، پچھتاوا بھی ہو رہا ہے۔ آئندہ کے لیے انشاءاللہ خود بھی احتیاط کریں گے، بچوں کو بھی سمجھائیں گے کہ ایسی کوشش کریں جتنا بچ سکیں۔ نگرانی شورا سے بھی عرض کرتا ہوں کہ میرے بچوں کے لیے دعا کریں کہ جلد صحت یاب ہو جائے، اور حفظ بھی کر رہے ہیں، ان کی دعا کریں کہ یہ جلد سے جلد حفظ بھی کر لیں، اور انشاءاللہ پھر جامعہ میں بھی جائیں۔
اللہ پاک آپ کے بچے کو مکمل صحت دے، تندرستی دے، اور آپ نے جو انہیں حافظ اور آپ بنانے اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوانے، عالم میں دین بنانے کی آپ نے جو نیت کی ہے، اللہ پاک آپ کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ آپ کی مشکل بھی دور ہو جائے، اللہ انہیں سنت و بری، راحت و بری، صحت بھری، طویل زندگی دے، مفتی اسلام بنائے، مبلغ دعوت اسلامی بنائے، آپ کے گھر بار پر اللہ پاک رحم فرمائے۔ یقیناً یہ جب دیکھتے رہیں گے تب تک ہوتا رہے گا، مگر بات وہی ہے کہ ایک چیز اگرچہ ڈیمیج ہوئی، لیکن اللہ پاک نے پورا وجود آپ ہمارے سامنے کہ اس کو سلامت رکھا، یہ چل پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور پکڑ رہے ہیں، یہ ایک شکر کے پہلو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا کریں، تاکہ بندہ وہ ناشکری کی طرف نہ جائے اور اداسی اور مایوسی کی طرف وہ نہ جائے، اور جتنا اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اللہ پاک اس نعمتیں اور بڑھاتا ہے۔ تاہم
جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جیسے یہ معاملہ یہ ہوا، اس کے اندر انڈر ایج میں، یعنی یہ بائک چلا رہے ہیں نا، شکل سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ
انڈر ایج ہوں گے،
انڈر ایج ہی، اب یہ بتائیے کہ اس صورت میں کس کو،
یہ ٹریفک کم ہو جائے گا اگر اس پر عمل ہو جائے تو، اگر یہاں باہر دیکھے تو ایج ویج کیا ادھر، تو بورڈ نظر نہیں آتا، تو عمر کہاں سے نظر آئے گی، کچھ نظر نہیں آتا، اور چل رہی ہوتی ہے گاڑی، اور والدین دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو موٹر سائیکلیں، اور پھر وہ جو کرتے وہ کرتے ہیں۔ میں ایک ہی بات کہ ٹھیک ہے والدین کو بھی روکنا چاہیے، نوجوانوں کو روکنا چاہیے، لیکن دیکھیں دنیا بھر میں یہ احساس، یہ جذبات، یہ فیلنگ، یہ باہر نکلنا، یہ کچھ آزادی، یہ ایسا نہیں کہ خالی یہاں ہے، دنیا میں لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا ہم کچھ کریں۔ نوجوانوں کو تو ویسے مطلب کہ کس طرح کی کیوریوسٹی آ ہی رہی ہوتی ہے، بے چینی آ ہی رہی ہوتی ہے، لیکن رول ہے نا، بعضوں کا رول بچا لیتے ہیں، قانون پر عمل جو ہے نا یہ بچا لیتا ہے، کئیوں کو بچا لیتا ہے۔ یعنی دنیا میں اس طرح کی چیزیں مطلب کہ نہیں ہوتی ہوں گی، ایسا نہیں کہ رول ہے، فوراً آپ سے لائسنس پوچھا جاتا ہے، آپ کی ایج دیکھی جاتی ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ دیکھا جاتا ہے، تو لوگوں کو پتا ہے کہ یار پھنس جائیں گے نا، پھنس جائیں گے، پنشمنٹ ہو جائے گی۔ اب یہاں پتا ہے کہ یہاں اگر پھنس بھی گئے تو ہمارا ایک وقت کا پھنسنا 50 روپے کا ہے،
صحیح،
ایک وقت کا پھنسنا 100 روپے کا ہے، یا پھنسنا کیا پھنسنا ہے، بھاگ جاؤ، کون آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو بدقسمتی کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں دے، رشوت نے بڑی بربادی پھیلائی ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بہت بربادی ہے، یعنی رشوت ایک ایسی لیکیج ہے، میں آپ کو بتاؤں، رشوت ایک ایسی لیکیج ہے کہ آپ کا جیسے اوور پانی کا ٹینک ہے نا، اب کولر ہے آپ کے گھر میں، پانی کا ٹینک ہے، واٹر بوٹل ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ لے لیں، ایگزامپل دے رہا ہوں، اس کے سائڈ میں آپ سوراخ ڈال دیں، آپ پانی ڈالتے رہیں
مگر کچھ
پانی ضائع ہوتا رہے گا، یہ رشوت ہے نا، یہ لیکیج ہے، یہ سوراخ ہے۔ آپ کتنا ہی قانون ڈالتے رہے، قانون ڈالتے رہے، قانون ڈالتے رہے، قانون پر بات کرتے رہے، لیکن جب تک کہ یہ سوراخ بند نہیں ہوگے نا، قانون پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا،
صحیح۔
تو بس اثر ہے یہی کہ اس طرح کے جو موویز ہوتی ہیں، پھر ہم بات جنرل کر رہے ہوتے ہیں، پرٹیکولر اس پرسن پر گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن ہم لائے اس لیے، یہ بھی اپنی مووی خود ہی دے رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں نا، مطلب ان کا کتنا ایک، آپ دیکھیں ایک کیسی کیفیت ہے، آپ کے سامنے جو کچھ ہے ہم دکھائی اس لیے رہے کہ یار نہیں نہیں یار، مگر پرابلم پتہ ایک اور کیا ہے، دنیا کا ایک واحد پروڈکٹ ہے, دنیا کا ایک واحد پروڈکٹ ہے, ایک واحد چیز ہے جو دنیا میں بنائی جاتی ہے, اور بنانے والی کمپنی اس پروڈکٹ کے اوپر اپنی چیز کے اوپر باقاعدہ لکھتی ہے کہ ہماری چیز کو استعمال مت کرنا, یہ تمہارے لیے موت کا سبب بن سکتی ہے,
اللہ ایسے ہی
یہ تمہیں کینسر لا سکتی ہے. ایسا صرف لکھتے نہیں ہے, باقاعدہ منہ بنا کر دیتے ہیں کہ اگر اس کا استعمال کرو گے تو منہ ایسا ہو سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں سگریٹ.
اس پہ پاؤں بھی بنا ہوتا ہے, اس کا
پاؤں بھی ہے,
منہ بھی بنا ہوتا ہے, پاؤں بھی بنا,
اچھا بنا ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں سگریٹ. بالکل پروڈکٹ مطلب کوئی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز بنا کے بندہ دے اور اس پر یہ لکھ کر دے کہ میرا یہ آئٹم استعمال مت کرنا ورنہ مر جاؤ گے یا مر سکتے ہو, لیکن ان کو پتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ لکھ کر دو قوم نے رکنا نہیں ہے, کیونکہ اس کے منع ڈبی پر تو منع لکھا نا اس کے باکس کے اوپر, مگر اس کو پینے کی جو تحریک ہے وہ اتنی زیادہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اسموکنگ اتنی بڑھ چکی ہے, کہ انبلیویبل, یعنی کیا مرد کیا عورتیں کیا بچے کیا بچیاں, یعنی بالکل بے دھڑک یہ سگریٹ پی رہے ہیں, اور کتنا نقصان ہے. پھر سگریٹ کی عادت نے انہیں چرس کی عادت میں ڈالا, سگریٹ کی عادت نے انہیں ہیروئن کی عادت میں ڈالا, سگریٹ کی عادت نے دیگر نشوں کی عادت میں ڈالا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مطلب کہ اتنا مطلب کچھ سب کچھ کر لیں, اس کے باوجود بھی جو چیز آپ کو اپنے کامن سینس سے رکنی ہے, خود آپ کو اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے, اللہ پاک سے نیک توفیق کی دعا کرنی ہے, اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا مطلب ہمیں عقل سلیم دے, قلب سلیم دے, کہ ہماری سمجھ میں آئے تاکہ ہم اس کو رک مطلب اس کو رکے, اس سے رکے. تو قانون بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں, عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے. اگر عمل خدا نہ خواستہ نہیں ہو رہا, جیسے کئی ملکوں میں عمل نہیں ہو رہا ہوتا اور دو پانچ پچاس سو دو سو روپے لے کر مطلب کہ لا قانونیت برپا کرو, مطلب قانون توڑو, اس کی اجازت مل جاتی ہے ایک طرح سے, لیکن نقصان تو الٹیمیٹ ہمارا ہے نا. وہ تو رشوت لے کر اپنے لیے جو جہنم کا انگارا جمع کرتا رہا, اللہ پاک اس کو ہدایت دے, لیکن الٹیمیٹ لاس کس کا یہ بتائیے. کیونکہ جو اس طرح کے رول بنے ہوئے نا اسپیشلی ٹریفک کے تعلق سے, وہ موسٹلی جو رول ہے نا وہ مطلب کہ ہماری بینیفٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم نقصان سے بچیں. تو کائنڈلی پلیز ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے بچیں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ بچے کی نظر چک گئی, اس نے توجہ نہیں کی اور جا کے سیدھا وہ ٹرک یا ٹرالر پر لگ گئی بیچارے کی موٹر سائیکل, اللہ خیر فرمائے. تو اب یہ بھی دیکھیں, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے, آپ کو بھی بتاؤں, میں یوں دیکھتا ہوں, میں نے دیکھا ہے موٹر سائیکل چلا یوں. اب کچھ بولنا ہے, اب یہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, اب یہ موبائل گرے تو پکڑنے کے لیے کیا چھوڑے گا, یہ ہینڈل ہی چھوڑے گا نا یار. اور پھر جو اب تو خود بھی گیا, موبائل ادھر, یہ ادھر, موٹر سائیکل ادھر, اور پبلک ادھر,
بالکل,
اور اس میں چار پبلک بیٹھی ہوئی ہوگی, اس کا مووی بنا رہی ہوگی, یہ سب ہوگا.
ان صورتوں میں الزام
اپنی نالش کرو خود ہی سے. مطلب یہ کیا مطلب مجھے کوئی گن پوائنٹ پہ کہتا ہے, یعنی ہیلمیٹ پہنتے ہیں, ہیلمیٹ کے اندر موبائل پھنسایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ضرورت کیا ہے آپ کو, مطلب کہ ایون کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اس دوران آپ موبائل یوز نہیں کر سکتے, موٹر سائیکل پر موبائل یوز کرنا اوف.
اور اب تو بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی کہ آدمی لگا کر,
ہاں مگر وہ بات ایسی ہو رہی ہوتی ہے,
ہاں
بات ایسی ہو رہی ہے, دانا کا کوئی شوق, مطلب آپ کی توجہ بٹی نا
بٹی, ہاں
یہ کار ہو موٹر سائیکل ہو, یہ جو روڈ ایکسیڈنٹ ہے نا, ان میں میجورٹی ایکسیڈنٹ وہ آپ کو ایک تعداد ایکسیڈنٹ کی وہ ملے گی جن میں صرف نظر چکنے کا ہے,
ایسے ہی
سیکنڈس, دیکھیں ایکسیڈنٹ سیکنڈس میں ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ سے پہلے کو پانچ منٹ تک گیم نہیں چل رہی ہوتی ہے کہ بچہ ایک لگے, اے بچہ اے لگے, یہ سیکنڈس میں ہو جاتا ہے, تھا ٹھو ٹھو کر کے ختم, ادھر آئی دو چار سیکنڈ, مطلب یہ ود ان اے سیکنڈ ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ, اس کو ود ان اے منٹ بھی نہیں کہتے, ایک کا دو منٹ کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ ادھر بریک ادھر بریک ختم. تو یہ, اور پھر موٹر سائیکل کی ایک لائن ہے, موٹر سائیکل دوبارہ میں کہتے تو سائیکل اور موٹر سائیکل چلانے والوں کو کہ آپ کی ایک الگ لائن ہے. میں مانتا ہوں کہ لائنوں میں بھی آپ بھی ادھر کی لائنوں میں, وہ ادھر کی لائنوں میں, رکشہ اپنی لائن چھوڑتا ہے, گاڑی اپنی لائن چھوڑتی ہے, موٹر سائیکل اپنی لائن چھوڑتا ہے, شاید پتہ ہے, یہ تو پتہ بھی نہیں کہ یہ روڈ پر جو ٹریک بنے ہوئے ہیں, یہ جو پٹے بنے ہوئے ہیں, اس کی بھی کوئی وجہ ہے کہ روڈ کی خوبصورتی کے لیے بنایا گیا, اچھا لگے گا روڈ, ایسا نہیں ہے, یہ سب رول ہے.
بالکل, بھائی صاحب الحمدللہ میرے سنت کا پیغام
کیا بات ہے.
نحمدہ و نصلی و نسلم علی خاتم النبیین. ماشاءاللہ ہفتہ وار سلسلہ پچھتاوا, برکتیں اس کی مل رہی ہیں, تھوڑا سیکھنے کو بھی ظاہر ملتا ہے, اس میں نئی نئی باتیں بھی سامنے آتی ہیں. تو میں بھی کچھ شیئر کروں کہ سواریوں کے ایکسیڈنٹ, اسکوٹروں کے ایکسیڈنٹ کے تعلق سے اور چلانے والوں کی بے احتیاطیاں, اس کا تو واقعی کوئی حل مشکل ہے. یعنی ہر طرح کے لوگ بے احتیاطیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو حاجی عمران کو, دونوں ہی میرا خیال حاجی فضیل حاجی عمران کو یاد ہو, اس میں ہوں گے بھی شریک پرانے آپ لوگ, کہ صحرا مدینہ ٹول پلازا کراچی کا افتتاح ہوا تھا. اس کے بعد جس نے افتتاح کیا تھا اس کی گاڑی کے پیچھے اسکوٹریں دوڑ رہی تھی, اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے اسکوٹریں دوڑانا اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرنا کہ جس نے افتتاح کیا اس کو. تو اس دوڑ میں ایک اسکوٹر اسلائی بھائی تھے سارے تقریباً بےچارے مذہبی ہولیے والے ہو, لیکن جذبہ ان کا, تو وہ بےچارے بھاگتے بھاگتے اس کو ایک پتھر سے وہ ٹکرایا, بڑا پتھر تھا, اور اس طرح گرا کہ آنکھ کے بل غالباً وہ گرا, آہ کر کے اس نے دم توڑ دیا. اسی طرح بعض اوقات کوئی ایسا ان کا پسندیدہ آدمی جاتا ہے نا, تو اس کے لیے اسکوٹریں دوڑاتے ہیں, یہ تجربہ ہے اسلام آباد, اسکوٹریں دوڑاتے ہیں اس کی کار کے پیچھے اور اس کو اشارے کرتے رہتے ہیں, ہاتھ لہراتے رہیں گے, اشارے کرتے رہیں گے, مڑ مڑ کے دیکھتے رہتے ہیں. تو اس میں بعد وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اسکوٹر اگر ٹکرا گئی نا کسی سے, تو چونکہ دوسری بھی اسکوٹروں کی لائن ہوتی ہے نا, پھر وہ پوری لائن جو ہے نا بعض وقت گرتی چلی جاتی ہے. اب کسی کے ہاتھ میں چوٹ گئی, سر میں چوٹ, کسی کے پاؤں میں چوٹ, یہ لگتی ہوگی, اور یار پوری کانوائی جو ہے وہ زمین بوس. اور پھر یہ کہ کوئی بڑی گاڑی بعض اوقات ان پر چڑھ جائے تو پھر مزید آزمائش. تو اس طرح کوئی ایسا شخص جاتا ہو جس کو دیکھنے کا شوق ہو, اسکوٹر اس کے پیچھے دوڑانی نہیں چاہیے, یہ ویری رسکی گیم کہ اسکوٹر والا دوڑتا ہے کہ اس کو دیکھوں, اور دیکھنے کے لیے وہ ظاہر ہے کہ اس کو طرف کار کی طرف منہ کرتا رہے گا اور اس میں اس کی توجہ سامنے نہیں رہے گی. موبائل فون استعمال کرنا منع ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے, کار کی بھی قانون ہے, اسی لیے کہ توجہ نہیں رہی ہے, مڑ مڑ کے دیکھتا رہے گا, اس لیے بھاگتا رہے گا کہ میں اس کو دیکھوں, میں اس کو دیکھوں, میں اس کو اشارہ کروں, میں اس کو سلام کروں, میں اس کو ہاتھ لے رہا ہوں. تو اس میں یہ بڑا خطرناک ہے. تو جو مجھے سن رہے ہیں اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے, ہم سب کی حفاظت کریں, اور جب بھی سواری کریں سواری کی دعا پڑھ لیا کریں, اس سے بھی حفاظت کا سامان ہوگا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ دعا آپ کر لیں اور یہ ہمیشہ پڑھا کریں جب بھی سواری کریں, بلکہ ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ توبہ بھی کرتے ہیں کہ اگر جانے انجانے کوئی کفر ہو گیا اس سے بھی توبہ کرتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, پچھلے سارے گناہوں کی توبہ, اپنی ماں باپ کی مغفرت کی توبہ وغیرہ کرتے ہیں. میری تقریباً معمول سواری میں یہ ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کی حفاظت ہو تاکہ ہم زیادہ زیادہ عبادت کر سکیں اور دین کی خدمت کر سکیں, نیتیں اچھی ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مادر قوم میں آپ کے سلسلے میں مخل ہو گیا.
کیا بات ہے آپ کی, ماشاء اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, اور امت تک بھلائی کی بات پہنچانے کا جو آپ جذبہ رکھتے ہیں, اللہ پاک مجھے بھی اس کا اور ہم سب کو اس کا صدقہ عطا فرمائے. جیسے موقع ملا اور آپ نے ماشاءاللہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے, یہ ایکسپیرینس کی حضور بڑی امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو پتا جو آپ نے ابھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا نا, یہ ایکسپیرینس کی حضور بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہی تجربات ہوتے ہیں جو سیکھنے کا موقع دیتے ہیں. اور آپ صرف یہاں نہیں, آپ کو تو دنیا کے کئی ملکوں کے اس طرح کے اور کئی شہروں کے تجربات ہیں کہ کس طرح کے لوگ حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور حقیقت یہ کہ ہمارے
محمد آصف عطاری تھے,
ہاں وہ سہرا مزے باز, یہ جن کو دیکھ رہے تھے امیر سنتی تھے, مطلب یہ اور بھی اب یہ بھی مطلب جیسے ہم بھی ابھی بھی کہیں آنا جانا ہوتا ہے نا, تو بھائی یہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اسلام بھائی چلا رہے ہوتے ہیں. اور مطلب اچھا ایک چند ایک دفعہ کہتا کیا ہوا ہے, میں جیسے میں ہوں نا ساتھ گاڑی کے اندر, تو اب وہ اسلامی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے یوں امیر سن کو دیکھے نا, دیکھے تو چند ایک دفعہ ہوا ہے کسی نے بابا ہاتھ ہلا دینا ذرا سا, بابا یار میں ان کو ہاتھ ہلاؤں گا نا تو یہ زیادہ کریں گے,
صحیح,
اگر یہ زیادہ کریں گے نا تو یہ زیادہ مطلب کہ یوں داخل ہونے کی کوشش کریں گے, اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو گیا تو. تو یہ سمجھ جانا چاہیے, اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ پرانا معاملے سنت کے ساتھ کہہ رہے ہیں, شاید ہر ویڈیو پر ان کے اپنے ایکسپیرینس اتنے آئیں گے کہ بیان سے باہر ہوگا. तो ये है, और ये तजदीद, ये दुआ जो सफ़र की दुआ है ये भी, और साथ जो एहतियाती तौबा और जो
ये भी कितना जबरदस्त अंदाज है
ये है। नहीं ये हर वक्त है जी जी। हर वक्त है। और मतलब हम अच्छा अमीर सुन्नत की एक और मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ। अच्छा अब ये होता है कि बच्चे साथ होते हैं ना तो खुद नहीं पढ़ते,
उन्हें पढ़ो,
आप बच्चों को कहते आप पढ़ो। जैसे हसन रजा है, उसैद रजा होते हैं, इसके लिए और बच्चे होते हैं अमीर सुन्नत के साथ। अच्छा किसी से दुआ पढ़ा ले तो किसी से वो तौबा की करवा दी, ये करवा ली। अच्छा वो बच्चे रिपीट कर रहे होते हैं, थोड़ा भूल रहे होते, याद दिला रहे होते हैं, और अपना ना यार अब मैं पढ़ देता हूँ
सही,
तो ये कर रहे होते ताकि बच्चों की आदत पड़े। ये भी एक अंदाज है सिखाने का कि बच्चों की आदत पड़े और बच्चे ये सीखें और बच्चे हर वक्त ये पढ़ते रहे। अल्लाह पाक खैर आफियत का मामला फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर सुन्नत का, आपका आना सतकरो मरहबा, आपकी आवाज़ सतकरो मरहबा, कितनों के दिलों में खुशी दाखिल करती होगी आपका ये अंदाज, आपकी आवाज, इसका यकीनन आपको अंदाजा होगा।
सुभान,
खुद हम उसमें शामिल है
अल्हम्दुलिल्लाह। एक और वीडियो भी है, तीसरी वीडियो की तरफ चलते हैं, मगर आप भी अपने अगर तजुर्बात शेयर करना चाहें तो अपनी वीडियो आप बनाकर भेज सकते हैं।
यानी आप चाहते हैं कि मेरे साथ जो हुआ आप किसी और के साथ ना हो,
ये सही सही,
तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपसे कुछ बातचीत की जाएगी, और अगर हम इसको मुनासिब समझेंगे हमारे मजलिस तो बाकायदा आपके पास इस्लाम भाई आएंगे, कैमरामैन आएंगे, और आपके साथ ये जो फिर एक तरीक़ेकार होगा उसके मुताबिक शूट की जाएगी, बनाई जाएगी मूवी, और हो सकता है फिर इसको फिर उसकी भी शरी तफ्तीश भी होगी कि ये बताना ना बताना, तो ये होगा। हमारी कोशिश यही होती है कि जो हम चीज़ें दिखाएँ वो तकरीबन शरी तफ्तीश से गुजरे ताकि कोई खिलाफ शरा चीज़ ना हो। जी
सही, आइए वीडियो की तरफ।
आज जो मैं वाकया आपको सुनाना चाहूंगा वो हमारे खानदान की एक औरत के साथ पेश आया। काफी अरसे से बीमार रहने लगी, कई जगह टेस्ट करवाने के बाद फाइनल यही हुआ कि पेट में रसौली है, उसका ऑपरेशन होगा। तो उन्होंने ऑपरेशन करने के बजाय ये कहना शुरू कर दिया ऑपरेशन की जो तकलीफें हैं वो बर्दाश्त नहीं करना चाहती। इस तरह वक्त गुजरता गया, जो रसौलियाँ थी वो कैंसर का रूप इख्तियार कर चुकी थी। उनके जो शौहर थे वो एक दिहाड़ीदार मजदूर थे। अब जब कैंसर का डायग्नोस हुआ तो वो बेचारे मजदूरी छोड़ के रोजाना सुबह से शाम तक हॉस्पिटल उनको लेके जाना लेके आना, इस तरह वो माशी मसाइल का भी बहुत शिकार हुए, कैंसर की तरफ गई। कैंसर का ट्रीटमेंट करवाते करवाते उसके साइड इफेक्ट में उनकी किडनी फेल हो गई, जिसके सब उनका इंतकाल हो गया। उनकी छोटी सी एक बीमारी एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप इख्तियार कर गई, और आखिरकार वही बीमारी उनकी मौत की सूरत में उनको अपनी फैमिली मेम्बर से दूर कर गई।
अच्छा अब अगर आप इस वीडियो की शुरू से इब्तदा देखते हैं ना, तो ये उनके लिए मैं बयान करूंगा कि जो इलाज में इतने एक्टिव नहीं होते, इलाज कराने के मामले में
ताखिर कर देते,
मतलब ताखिर भी करते हैं, और पता नहीं कोई डॉक्टर के डॉक्टर भी बनते हैं
सही।
तो लेकिन ताहम ये कि अल्लाह पाक इनकी मगफरत करे मरहुमा की, और अल्लाह पाक इनको गरीब रहमत फरमाए
सही,
इनके सगीरा कबीरा अल्लाह गुनाह माफ़ फरमाए, इनके तमाम लवाहिकीन को सोगवारों को अल्लाह ताला सबर भी दे और सबर पे अजर भी अता फरमाए, और जो बीमारी इनको हुई अल्लाह पाक वो बीमारी इनके लिए गुनाहों का कफ़ार और दर्जात की बुलंदी का सबब बनाए। ताहम ये कि वीडियो तो हमारे सामने ही है।
अच्छा इसमें ये इरशाद फरमाएं कि जैसे उमूमन ये होता है कि भाई आप इलाज मुआलजे पे खर्चा करेंगे, इसमें तो बच्चे पड़ जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, नहीं करते चल जाएगा, परहेज कर लेते हैं, शायद परहेज की वजह से फर्क पड़ जाए, तो क्या फरमाते हैं?
परहेज से फर्क तो पड़ता है, लेकिन परहेज भी करनी है तो डॉक्टर से बात तो करें
ठीक है,
क्या किस चीज़ से परहेज करेंगे।
हाँ ये बात आप,
ये भी नहीं पता कि भाई परहेज किस चीज़ से करनी है, पता नहीं जिस चीज़ से परहेज की वही एनर्जी की चीज़ हो और जो चीज खा रहे वही नुकसान पहुंचा रही हो, यानी इसका फार्मूला ये होता है मेडिकली जो रिकमेंडेड है, जो मेडली जो मेरी जो डॉक्टरों से जो मशावरतें रहती हैं, तो एक अरसा चूंकि मदनी क्लिनिक में करता रहा एक प्रोग्राम पूरा, उस पर डॉक्टर से और हकीम से मेरी काफ़ी इंट्रेक्शन रही। फिर एक पद था कि माह रमज़ान में एक मैंने प्रोग्राम किया था हमारी नस्लें, उसमें ज़्यादा बहुत डॉक्टरों से मैं रबते में रहा, बातचीत होती रही बच्चों के ताल्लुक से, दीगर बीमारियों के ताल्लुक से। लाइव प्रोग्राम करना होता है तो जो इनके माहिरीन होते हैं उनसे कुछ राय लेनी होती है कि क्या इसके बारे में कहते हैं, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है ना मैं उसके आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जब भी अपनी तबीयत में कोई एबनॉर्मेलिटी देखें, अननेचुरल देखें कि भूख नहीं लग रही, नींद आ नहीं रही है, आ रही तो सही नहीं आ रही है, बिला वजह की थकन लग रही है, आपको सांस फूल रही है, بار بار بخار آ رہا ہے, کچھ بھی آپ کو اپنے بدن میں ایب نارمل سی چیز نظر آ رہی ہے, تو میرا اس میں آپ کو یہی مشورہ ہوگا کہ آپ امیڈیٹ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں, معالج جس کو کہتے ہیں, ڈاکٹر سے رابطہ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ ہو رہا ہے, ممکن ہے کہ کوئی ایسی روٹین کی چیز ہو, موسم کے تعلق سے ہو یا وغیرہ وغیرہ, ڈاکٹر کہہ دے بھائی یہ کر لو. بعض اوقات پانی کم پی رہے ہوتے ہیں تب پرابلم آ جاتا ہے, تو اتنا مطلب کوئی میڈیسن کی طرف نہیں جانا ہوتا. یا بعض اوقات ڈاکٹر کہہ دیتے کہ آپ تھوڑا اپنی واک بڑھا دیں, پیدل چلنا شروع کر دیں, تھوڑی یہ چیز کر لیں, تھوڑا وہ کھا لیں, تھوڑا جوس پی لیں, آپ دو کیلے زیادہ کھا لیں, ایپل لے لیں وغیرہ وغیرہ. ڈاکٹر اس طرح کی بھی ایڈوائس کر, ہر وقت آپ کو میڈیسن پہ نہیں جانے دیتے. یا پھر یہ کہ آپ چار گھنٹے پانچ گھنٹے سوتے تو کہیں گے کہ آپ پلیز سات گھنٹے سوئیں, اس طرح سوئیں کہ آپ کو نیند پراپر آ جائے, اپنے نیند کے ٹائمنگ کو. تو ڈاکٹر بعض اوقات آپ کو یہ سجیسٹ کرتے تو آپ کی وہ جو ایب نارملٹی جو ہے نا, جو آپ ایب نارمل لائف کی طرف جا رہے ہیں, اس کو نارمل کی طرف لانے میں ڈاکٹر آپ کو مدد کرتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کرتے نا تو یہ مزید بیماریاں پیدا کرتی ہیں. پھر سوتے سوتے بندہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, پھر شوگر بڑھ جاتی ہے, تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ڈاکٹر سے میرا تو سچی بات ہے کہ اس پہ کافی میرا بلیو ہے کہ آپ تھوڑی سی اب نارملٹی آپ کو فیل ہوتی ہے تو ایک آدھ دن تھوڑا سا چیک کر کے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں, نہیں ہو رہا فوراً ڈاکٹر سے رابطہ, ڈاکٹر صاحب کیا کریں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی پرابلم سے آپ اللہ نے چاہ تو بچ جائیں گے.
اچھا آپ نے یہاں پر یہ کہا کہ جیسے ڈپریشن اور یہ ہو جاتا ہے معاملہ, تو ایک ہمارے دوست کو یہ معاملہ ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس اس کو لے گئے, ڈاکٹر نے کہا کہ یار میں آپ کو دوائی دے سکتا ہوں مگر آپ ابھی اس اسٹیج پر نہیں پہنچے, اگر آپ ایک کام کریں کہ آپ اپنا فوکس کریں ذہن اور سانس اوپر لیں پھر نیچے نکالیں, اچھی سوچ سوچیں تو کیسا اچھا ہو جائے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہی اپنے دوست کو کہا کہ آپ کو ایک مرتبہ امیر السنت کا بیان وہ یاد ہوگا جو آپ کو ڈپریشن اور اس حوالے سے کیا تھا,
سانس کے بعد لمبی سانس لینے کے بعد,
ہاں اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ یوں سانس لیں اور آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ سبز گنبد کا جلوہ دیکھ رہا ہوں, ہلکی ہلکی فوار پر
پھیپھڑوں میں سانس جمع کرو,
سانس جمع کریں پھر نکالیں. تو میں نے کہا یار یہ چیزیں تو بہت ٹائم پہلے ہم بیان میں سن چکے ہیں مگر ہم کریں تو نا,
فری میں ملتی ہے نا,
بس یہ کہ کئی چیزیں آپ نے صحیح فرمایا, ڈاکٹر کے پاس جانے سے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں.
نہیں مطلب کسی سے بات کریں نا تو کہتے یار کیا فائدہ ہوگا ڈاکٹر کے پاس جا کر, کمال کی بات کرتے, میرے تو کل کام نہیں کرتے,
بار بار ڈاکٹروں کے چکر ہوں گے,
نہیں ہوں گے ڈاکٹروں کے چکر, آپ کیوں آپ نے ہی ایسی روٹین بنائی نا جسے آپ بار بار ڈاکٹروں کے چکر ہو رہے ہیں, سب کو تو بار بار ڈاکٹروں کے چکر نہیں ہو رہے,
صحیح فرمایا.
لیکن جب ایک چیز ہو گئی ہے, اب گاڑی میں خرابی پیدا ہو گئی ہے تو اب ہوتا پھر ایج بھی ہوتی ہے بعض اوقات, اگر ایج نہیں ہے خود ہماری بھی احتیاطیاں ہیں جس کی وجہ سے پھر ڈاکٹروں کے چکر لگ ہی رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہم ہی بھی احتیاطیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر ڈاکٹر کے اب ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے اپنے بدن کے ساتھ تو انصاف کریں, یعنی اس معنوں کر کے ڈاکٹر کو دیکھیں, ورنہ یہ بیماریاں اور پل جائیں گے. کہتے ہم لوگ نہیں مانتے, میں آپ کو بتا کیا بار بار ڈاکٹر کو, ڈاکٹر نے کیا بول دینا ہے, ڈاکٹر یہی بولے گا نا, کیا کہ ڈاکٹر تو یہی بولے گا نا, اب یہی بولے گا تو ڈاکٹر, تو پھر ڈاکٹر کس چیز کا ہے,
صحیح فرما,
اور اپنی مرضی کا پھر ٹریٹمنٹ نہ کرے ڈاکٹر سے پوچھے. اچھا اب ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو فرق نہیں پڑ رہا, تو پھر ڈاکٹروں کے فرق نہیں پڑ رہا, ارے نہیں اس گولی سے نہیں فرق پڑتا میں نہیں کھاتا, ابھی نہیں کھاتا تو ڈاکٹر کو کہے تو صحیح بھائی یہ گولی سے فرق نہیں پڑ رہا, ڈاکٹر میڈیسن تبدیل کر دیں گے. پلیز نہ کریں, یہ بیماریاں جب بڑھتی ہیں بہت تکلیف دیتی ہیں. اور امیر سنت کا ایک فرمان میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اگر بڑھاپا صحت اور عافیت کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو جوانی میں پرہیز کرو.
اللہ اللہ,
اگر زندہ بچ گئے نا تو انشاءاللہ آپ کی جو ایج ہے نا اس بڑی ایج میں وہ کافی راحت رہے گی. یہ بہت پتے کی بات ہے, یعنی کہ یہ ایک بڑا ایکسپیرینسڈ پرسن ہمیں بتا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ مطلب کہ ہمارے یہی ہوتا ہے کہ ہم مطلب کہ جو سمجھ میں آوا,
بڑا زبردست جملہ ہے,
بڑا زبردست. میں آپ کو اچھا یہ ہے, بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, ہماری نفس قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے, یعنی آپ کی عقل بھی مان رہی ہے میری عقل بھی مان رہی ہے
اور اس کو امپلیمنٹ کیسے,
لیکن اب نفس مان لے, اچھا نفس مان بھی لے, نفس تعاون بھی تو کرے نا. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پھر آگے یہ گاڑی چلتی نہیں ہے, یار آج کر لو اپنے نا, آج والے آج تو چلے گا,
آخری
آخری وہ آخری آتی کبھی نہیں ہے,
کل سے کریں گے, کل سے پیدل چلیں. چلے اچھا حاجی صاحب تھوڑی باتیں میں بھی اپنے لیے بھی کر لیتا,
اچھا کرنی ہے
سمجھ. चलिए आइए,
मैं आपको बताऊं, एक इस्लाम भाई से मुलाकात थी मेरी, तो मुझे नहीं पता कि वो भी देख सुन रहे होंगे नहीं सुन रहे होंगे, तो बातचीत करते करते पैदल, हर वक्त मौका नहीं मिलता मोबाइल पर कोई मैसेज करना या मैसेज सुनना है, सिंगल हैं तो पैदल चलते चलते कर लिया, या कोई आपस में ऐसी जैसे हमारे को बात करनी है तो हम पैदल चलते चलते आपस में कोई बात कर लिया, चलो चलते चलते बात कर लेते बैठने के बजाय, अब प्रोग्राम तो है नहीं कि बैठ के करें, चलते चलते प्रोग्राम तो नहीं कर सकते, अब ये सभी घंटा सवा घंटा हम प्रोग्राम करें तो बेहतर है ना कि अब जब यहाँ से उठ के जाएँ और कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो तो थोड़ी देर आप पैदल चल लें। तो एक इस्लाम भाई के साथ मैंने बातचीत हो रही थी, हम बैठे, हम कहा पैदल चल के बात करें, तो क्या चलते हैं, बड़ा मुश्किल 5-7 मिनट में पैदल चले होंगे, वो नहीं चल सके। मैं कहा क्या हो गया, बोला नहीं यार नहीं चला जाता, क्या यार 5-7 मिनट, माशाल्लाह मुझसे कम उम्र थी उनकी और यूं कोई ऐसा भी नहीं था, कोई तो नॉर्मल बॉडी थी, कोई ऐसा वेट भी नहीं था इनका, नॉर्मल थे, मुझे ऐसा लगा ये चल सकते होंगे, तो लेकिन नहीं चल सके, लेकिन मैंने देखा मेरे सुन्नत को, यानी यूं आप कह सकते हो 15 मिनट 20 मिनट या कम या ज्यादा, इससे ज्यादा इससे कम आप चलते हैं। अच्छा ये चलने में ना बड़ा है कि मैं अल्लाह की इबादत के लिए खुद को सेहतमंद रखना चाहता हूँ, ये कमाल है ना। हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक कमजोर मोमिन के मुकाबले में कवी मोमिन को, यानी कवी मुसलमान को, ताकतवर मुसलमान को पसंद फरमाता है, और इसकी शरह में लिखा है कि क्योंकि जो कमजोर हो जाता है ना उसको बीमारियां लग, यानी सेहत और बीमारी को भी यहाँ बयान किया है शरह में, कि बंदा सेहतमंद होता है तो अल्लाह पाक की इबादत ज्यादा कर पाता है और इबादत दुरुस्त कर पाता है। तो सेहतमंद रखना है खुद को, इलाज कराना है, अगर कहीं डॉक्टर कहता है टेस्ट करवा लो तो घबराए नहीं, बट टेस्ट करवाना है, टेस्ट से क्यों घबराते हैं आप, हर 5-6 महीने लिपिड प्रोफाइल करा लें, अपना शुगर टेस्ट करवा लें, इतना मीठा खाते हैं, इतना नमकियात हमारे नमक हम इतना खा लेते हैं, तो ये टेस्ट वगैरह हो जाएंगे। मैं आप सबको एडवाइस करता हूँ जो भी देखो सुन रहे, कोई नहीं सस्ते टेस्ट भी हैं, थोड़े महंगे टेस्ट भी हैं, लेकिन टेस्ट ना करवाने की सूरत में क्या यार
ये। अच्छा दूसरा जी साहब, ये जो आपने बातें फरमाई हिम्मत की, अब हज आ रहा है, हज के अंदर कितना चलना होता है, सारी बातें रोज़
उम्रे में चलना होता है, आप तवाफ करते हैं, उम्रे का तवाफ करते हैं, सही करते हैं, और पूरा मस्जिदुल हराम में जाना, मस्जिदुल हराम से बाहर आना, फिर जाना, तो फिर आना, फिर मतलब होटल से निकल के मस्जिद नबी शरीफ की तरफ जाना, वहाँ आना, वहाँ बैठना, फिर नीचे बैठना, मस्जिद नबी शरीफ में कितना बंदा नीचे बैठे ना,
ऐसे ही
आका के दरबार में जाएगा तो फर्श पर बैठेगा,
क्या बात है,
बाहर बैठेगा सब गुंबद के साए में फर्श पर बैठेगा, देर तक बैठेगा, तो यूं मतलब के ये सेहत को अल्लाह ताला हमें जाहिरी बातनी बीमारियों से बचाए, और इस तरह कभी भी अपने बीमारी के ताल्लुक से सुस्ती ना करें, कंप्रोमाइज ना करें, इमीडिएट फौरन डॉक्टर से रब्ता करें, अगर खुदा ना करे डॉक्टर से फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर बदल दे, डॉक्टरों की लाइन लगी हुई है, डॉक्टर बदल दे, डॉक्टर दवाई बदल देगा, लेकिन अपनी सेहत के साथ तो कम अज कम सिंसियर रहें कि यार मैं जल्दी सेहतमंद हो जाऊं।
आमीन आमीन। हाजियों को भी कहा जाता है कि चलने की भी प्रैक्टिस करें, कि वहां पर चलना है, फिर प्रैक्टिस नहीं होती तो वहां पर बैठ जाते हैं बेचारे। अच्छा जी, इस सिलसिले की आखिरी वीडियो जी दिखाइए।
मेरा नाम फरहान है और अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक वाकया पेश आया था कि मेरी बाइक का जो इंजन है ना उसमें काम आ गया था, तो मैंने सोचा यार मैं पहले ये काम करवा लूँ। अब बाइक लेके जब मैं उस मैकेनिक के पास पहुँचा तो उस मैकेनिक ने बोला मुझे, क्या यार आपके इंजन का जो वेट है ना उसमें काम है, वो चेंज करना पड़ेगा, अगर आप बोले तो मेरे पास एक वेट पड़ा हुआ है मैं वो उसमें लगा दूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप इसमें वेट लगा फिट कर दें, मसला नहीं। मेरा अपना जो वेट खोला और अपना वेट इसमें मेरी इंजन में लगा के फिट कर दिया, तो मैं बाइक लेके घर पहुँचा तो उसमें आवाज़ दोबारा आने लगी। जब बाइक लेके दोबारा मैं उस मैकेनिक के पास पहुंचा तो उसने बोला यार मैंने काम तो उसमें ठीक किया, मैंने भाई अब चेक कर ले, इसमें आवाज़ दोबारा आ रही है। उन्होंने जब मेरा इंजन दोबारा सेकंड टाइम खोला तो उन्होंने दोबारा बोला कि यार वेट इतना मसला है आपके, ये वेट बनवा के लेके आ जाएं। मैंने बोला ठीक है, मैं वेट बनवा के लेके आया तो उन्होंने वेट को दोबारा इंजन में फिट किया और मुझे बाइक दे दी। मैं बाइक लेके जब घर पहुंचा दोबारा तो उसमें दोबारा आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा यार मैं क्यों ना इसको किसी और मैकेनिक को दिखाऊं। मैं एक दूसरे मैकेनिक के पास गया, मैं उस मैकेनिक का, यार आपका वेट ओके, जो उसने इसमें वेट लगाया वो खराब है, उसने काम ठीक से इसमें नहीं किया, आप दोबारा उसके पास बाइक लेके जाएं। जब मैं तीसरी मरतबा उस मैकेनिक के पास गया तो उसने जब मेरी बाइक का इंजन खोला तो इस दौरान उसने मेरी बाइक का सिलेंडर भी खराब कर दिया और पिस्टन भी खराब कर दिया और मुझे वो दोबारा बनवाना पड़ा। मेरा वक्त भी खराब हुआ और मेरे पैसे जहाँ 5,000 रुपए लगने थे वहां मेरे पैसे 10,000 रुपए लग गए, मेरे 2 दिन गायब भी हुए। इस चीज का मुझे बहुत पछतावा कि मैं काश उस मैकेनिक के पास चले जाता जिससे मैं काम करवाता था और जो अच्छा काम करता था।
हजरत ये तो बड़ा यूं समझे गली मोहल्ले का मसला है,
तो गली मोहल्ले का मसला।
अच्छे प्रोफेशनल्स मिलना जो है ना, मैकेनिक अपने अल्लाह का भला करे, ये टायर बनाने वाले, ये बाइकों का मसला बड़ा मसला है हजरत ये। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अच्छा कुछ होते हैं अच्छे, अगर कोई मसला जैसे डॉक्टरों का है वो महंगे होते हैं सही काम करेंगे?
महंगे नहीं होते, वाजिबी होते हैं यार।
सही,
आप हर चीज को महंगा क्यों कहते हैं? कुछ एक चीज की कीमत है, वाजिबी भी कह सकते हैं आप उसको, कि भाई एक वाजिबी है वो, मतलब उससे कीमत कम ले रहा है लेकिन अब वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन हर हर शख्स महंगा नहीं होता।
सही,
देखिए वो पार्ट लगाता है, चेक करता है वो, जिसको एक बड़ी मिसाल शुरू से हम सुनते चले आ रहे हैं, अमीर सुनने ने बयान की है कि एक मशीन बंद हो गई फजल भाई।
सही,
जब एक मशीन बंद हुई ना और वो मशीन शुरू ना हो तो एक मिस्त्री को लाया गया, मैकेनिक को, मिस्त्री तो नहीं कहे, मैकेनिक को लाया गया मशीन का, और उसको देखा कि ये मशीन चल नहीं रही है। तो उसने कहा मैं चलू कर देता हूँ।
सही,
तो कहा ठीक है, उसने थोड़ी ली और एक खास जगह पर थोड़ी मारी ठा करके मशीन चल पड़ी। कहा कि पैसे 1,000 रुपये, 1,000 रुपये एक अथॉरिटी के को 1,000 रुपये लेता है क्या? कहा 1,000 रुपये, सोचे तो सही, बोला तो किस चीज के 1,000 रुपये ले रहे हैं? अथॉरिटी तो मारी थी, वो भी एक तो एक अथॉरिटी का 1 रुपया। फिर 999 रुपये इस चीज के मारनी का, ये मुझे पता था।
क्या बात है, क्या बात है,
कहा मारनी थी ये मुझे पता था, तजर्बे के 999 रुपये थे बाकी। वरना वो दूसरा कोई आएगा ना अनाड़ी, वो पूरा खोलेगा।
सही,
और उसको फिर भी नहीं पता चलेगा कि क्या करना है। तो वो मैंने पिछले पोरा में बयान किया था, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार।
अगर एक हमारे दोस्त है,
अच्छा याद आ गया कुछ,
उन्होंने जो अपना एसी, बोले यार मेरा गाड़ी ठीक नहीं होता, कितनी मर्तबा करवाया सिलेंडर, ये क्या क्या बदली करवाया। एक बार मिले, बोले यार वो मेरा एसी ठीक हो गया। तो मैंने कहा वाह कौन आदमी है, हमें भी बताओ। और आदमी तो बता दो मगर निकला पता है क्या? उसने कहा मैं अभी चेक करता हूँ, निकाला एक पत्थर निकाला, एसी ठीक हो गया।
ये होता है ऐसा, यानी ये यूं समझिए कि हमारे यहाँ एक मिजाज बन गया है।
जी जी,
और आप भी शायद जो हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मिजाज बन गया है हर ये ऐसे काम, ये ऑफिस में भी मिजाज है, कई जगहों पर मिजाज, यार ये 2 पैसे बचा कर काम करवा देता है। 2 पैसे बचाना ये अच्छी बात है, लेकिन काम में कंप्रोमाइज करवा कर, काम कमजोर करवा कर 2 पैसे बचाना ये कोई कमाल की बात नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा कैमरा खोल के मुझे दिखा दे तो मैं आपको ये थोड़ा सा ये बताता हूँ। ठीक है, ये चेयर है, मैं इस पर एक चेयर पर बैठा हूँ, कुर्सी पर बैठा हूँ।
सही,
ठीक है, मैं मुझे नहीं पता है चेयर कितने की है, मगर एक मिसाल देता हूँ कि ये चेयर 10,000 रुपये की, ये कुर्सी 10,000 रुपये की। एक शख्स आकर कहता है मैं कुर्सी आपको दूंगा, 10,000 रुपये की मैं आपको कुर्सी बना दूंगा, चले ठीक है। अब एक शख्स आकर कहता है मैं 8,000 में बना कर दूंगा, सेम, हाँ सेम होगी। कैसे सेम होगी? इसलिए सेम होगी कि इसके पीछे ये जो रैगजीन है ना जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये रैगजीन है, ठीक है, ये रैगजीन है, ये थोड़ा हल्का हो जाएगा। अच्छा, जिस फॉर्म पर मैं बैठा हुआ हूँ, रैगजीन के अंदर फॉर्म है, वो फॉर्म थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है, ये लकड़ी है, ये थोड़ी हल्की हो जाएगी, तो ये 2,500-3,000 रुपये में हो जाएगी, कम चीज वही होगी। मगर इसका पता कब चलेगा? जब मैं इसको कंटिन्यू यूज करूंगा, कि जब इसका फॉर्म दब जाएगा, जब इसकी लकड़ी उखड़ना शुरू हो जाएगी, जब इसके पूरे जो इसके जो कब्जे हैं या इसके जो जोड़ हैं वो हल्के होना शुरू हो जाएंगे, और भी थोड़ा सा पता चलेगा ये जो चार टांगों पर खड़ी हुई ये कुर्सी, इसकी एक टांगी बेचारे की ज़ईफ हो गई, ठीक है, इसको दिमाग खा गई। तो अब 2,500 बचना, बच्चों का मजा बहुत आएगा, ओहो भाई तकरीबन 50 कुर्सियाँ बनी थी और 50 कुर्सी पर एक कुर्सी पर 2,000 रुपये बचे, यार 1,00,000 रुपये इस आदमी ने बचा लिए ना, कमाल का आदमी है, देखो यार ये अच्छा आदमी है, और इसने करप्शन नहीं किया। अच्छा, इसको ये भी ना एक्सपीरियंस की कमी थी,
हाँ।
वो 1,00,000 रुपये बचाना आदमी तो अच्छा लगेगा, लेकिन एक कुर्सी मेरे पास चलती 1 साल अब यही कमजोर कुर्सी मुझे साल में 3 दफा बनानी पड़ी, नहीं बनानी पड़ी, इसका मेंटेनेंस देना पड़ा। तो ये मतलब 10,000 के बजाय एक साल का अगर मैं एवरेज निकालूं, ये मुझे 12,000 से 13,000 में कुर्सी पड़ गई।
सही।
तो सस्ता लाना जो है ना, ये कमाल नहीं है। हाँ, वही चीज, यानी ये कलम है, ये 10 रुपए की है, कोई फर्क नहीं है, सेम कलम है, मगर मेरे को बातचीत करके, नेगोशिएशन करके, किसी और से बात करके, किसी और वेंडर से बात करके, सेम कलम को कोई फर्क नहीं है, 1920 का फर्क नहीं है, 1920 भी नहीं है। और अगर मैं एक दो रुपए सस्ती ले आता तो ये मेरी मतलब कि एक एक्सपर्टीज है कि मैं 4 आदमी से बात करके मैं ले आया। लेकिन यही कलम बिलूर तो नजर आ रहा है, लेकिन अंदर में इसकी जो रिफिल है वही कमजोर है, वही सस्ती है, इसकी इंक ही कम है, या ये चलते चलते रुक जाएगी। फिर अब ये बताया कि ये कलम का अगर 2 रुपए बचा भी लिए तो जो 50 रुपए का खून जला मेरा चलाते चलाते, इसकी भी कोई कीमत है या नहीं है। तो ये चीजें मोटरसाइकिल हो, कार हो, एसी हो, अपने सोफे हो, अपना फर्नीचर हो, वॉट एवर हो, बनाते वक्त इस चीज को देख ले। फिर अगर आपको सस्ता बनाना है ना, बनता है सस्ता, मार्केटें बनी हुई हैं कि फला जगह जाओगे तो महंगा बनता है, फला जगह जाओगे तो सस्ता। तो अगर सस्ता बनाना है तो फिर आपको ये भी पता होगा सस्ता सस्ता ही होगा, फिर ये इतना अरसे के बाद ये अपना सस्तापन दिखाना शुरू करेगा, डेफिनेटली शुरू करेगा,
ऐसा ही।
और फिर अब इत्तेफाक अगर ये चल गई तो ये होता है।
अच्छा, अब ये बड़े दर्द दिल के साथ इनके साथ ये मामला हुआ, कुछ मैकेनिक हजरात को भी समझाना।
देखिये, हमारे यहाँ मैकेनिक सबका तो मैं नहीं कहता, लेकिन एक तादाद मैकेनिक की या टेक्नीशियन की ऐसी होती है हुजूर के, वो सीख देख देख कर सीखी है।
सही।
वो एक मतलब के 17-18 साल का लड़का था, एक अच्छे तजर्बेकार मैकेनिक के साथ उसने काम शुरू किया।
जी।
वो 10 का पाना ला, 20 का पाना ला, 2 का पाना ला, स्क्रू ड्राइवर ला, ये ला, वो लाते लाते देखता रहा, देखते 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 उसने अपनी एक दुकान खोल ली। भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मगर डेफिनेटली इसको वो एक्सपीरियंस नहीं है जो उसको था,
उसके उस्ताद को।
1000 बड़े सर्जन के साथ आप खड़े हो जाएं, लेकिन आप यूं ऑपरेट थोड़ी कर लेंगे विदाउट एनी एक्सपीरियंस। इसका मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ जो समझाने के लिए किताब में लिखा गया, इससे पहले भी शायद मदरी के नाजरीन ने सुना हो, मगर मौके की मुनासिबत से सुना देता हूँ। कि एक शख्स किसी घर में ब्लैकआउट हो चुका था, लाइट उड़ गई थी, तो जो वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया कि भाई हम लाइट उड़ गई है, पूरे महल्ले में लाइट है, मेरे घर में लाइट नहीं है, लोड शेडिंग भी नहीं थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, घर के अंदर ही कोई प्रॉब्लम था। तो वो मतलब कि उसने मेन चीज खोली, हाँ जो बॉक्स खोला, और एक पांव पे खड़े होकर उसने सॉकेट वो निकाला और सारा वो कर फेज वगैरह सब निकाल कर सही किया और हो गई, लाइट आ गई। उसके साथ जो उसका बच्चा था, जो बैग खोल कर टेप देना है तो स्क्रू देना है तो पेचकस देना है तो तार देना है, सब करता रहा बेचारा। फिर वो लाइट आ गई, वो चले गए। इत्तेफाक हुआ कि वो थोड़ी देर के बाद कॉल आए कि वो लाइट फिर चली गई है, जरा आइएगा। अब मास्टर तो था नहीं, वो तो चला गया था कहीं। तो बच्चा बोला यार चलो अब वही करना है ना, वो जैसे गया छोटा, तो छोटा ने जाकर जैसे हाथ लगाया भार करके झटका लगा, दूर जाकर गिरा। अब वो तो बेचारा गिर गया। और थोड़ी देर के बाद जब उसका उस्ताद आया तो बोला उस्ताद क्या हुआ? उस्ताद तुम हाथ लगाता है तो सही हो जाता है, हम हाथ लगाए तो झटका मारता है, ये क्या है? उस्ताद बोला तू उस्ताद नहीं है ना, मैं उस्ताद हूं। तो क्या मतलब? बोला तू मेरी टांग नहीं देखता क्या? वो मेरी एक टांग लकड़ी की है, टांग टूटी हुई थी, उसे लकड़ी की टांग लगाई हुई थी।
अल्लाह हो।
बोला जब मैं लकड़ी की टांग पर खड़ा होकर हाथ लगाऊंगा तो बेवकूफ करंट नहीं लगेगा, और तू जिस पर खड़ा हुआ था वहां करंट लगता है। अब समझ गए, उस्ताद उस्ताद होता है। तो ये वो उस्ताद था। तो ये होता, अब ये बने कि भाई ये वेट टूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया,
ये
मेरे खुद अपनी जिंदगी के इतने तजर्बे हैं हुजूर, ये मोटरसाइकिल वाले तो यकीन क्या बताऊं।
नकल के लिए भी अकल की जरूरत है।
हाँ भाई, लिखती सीख कर करे, मैं कहता हूँ सीख कर करे, हर चीज सीखी जाती है। पूरा मैकेनिकल सिस्टम है, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, पूरा किताबें इसकी पूरी चीजें समझी जाती हैं, उसके बाद करने के लिए बैठे हैं। फिर अब चाहे इतना सीखने के बाद अगर कोई करेगा तो भी 2 पैसे ज्यादा तो लेगा ना।
ऐसे ही जब भी आपने बात कही कि वो कुछ तजुर्बा, आपके पास बाइक थी?
हाँ, तो बाइक ही बाइक चलाइए और क्या, और हाँ मैं तो लगता था सीधी बात है, मुझे नहीं मजा आता था एडी से ब्रेक लगाने का मैं एडी से ब्रेक लगाने को पसंद नहीं करता था, मैं आगे पंजे से ब्रेक लगाने को पसंद करता था, सीधी बात है। मेरी एडी फुटरेस्ट पे रहती थी, मेरी एडी ब्रेक पर नहीं रहती थी, मुझे नहीं मजा आता
आपको था। अच्छा मैकेनिक मिला था?
हाँ, मुझे मैं जिससे काम करवाता था नॉर्मली,
कोई याद हो?
नहीं, मैं ब्रेक शू भी उसे चेंज करवाता था, मैं जो भी चीज मुझे करानी होती थी, सर्विस ट्रेनिंग करानी होती थी, मोटरसाइकिल सर्विस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, मैं उसी से करवाता था। क्लच वायर सही कराना है, एक्सीलेटर वायर सही कराना है, हेडलाइट सही करानी है, कोई नई चीज करानी है, तो मैं एक मैकेनिक ऐसे शुरू से एक तबीयत 25 जगह बनी हुई है कि बाल कटाना है किस एक से, मैकेनिक एक,
आपने मुझे बताया था कि मैं अपनी दवाएं भी वहीं से मंगवाता हूं एक जगह से।
हाँ, तो ये हर चीज एक, यानी आपका एक एक्सपीरियंस हो गया, बार बार तजर्बात करने की क्या जरूरत है यार। तो ये है कि अगर आप अपनी चीजों को दुरुस्त कराना चाहते हैं तो जाहिर है कि फिर वो अगर अच्छा फिर उसे नहीं लगाए, मैकेनिक को जरूर चाहिए ईमानदारी से काम करे, बेईमानी से काम ना करे। नहीं आता तो मना करते, सर नहीं आता, मुझे नहीं आता, खाली किसी गरीब का नुकसान करना। एक वैसे हालात आपके सामने, ब्रेक शू डालने के पैसे नहीं है लोगों के पास, टायर का वो सारा वो इसके धंधा नहीं थे घिस गए सारे, नया टायर लगाने की उसके पास वो पैसे ही नहीं उसके पास, ट्यूब का पंचर इतना लगा चुका है कि पंचर लगाने की बात करने के बाद जगह नहीं होती, पंचर लगा बोलता होगा भाई मेरे से फ्री में ले, मेरे से ले जा, जब पैसे है तब दे देना। नहीं, वो बेचारा मतलब कि उसकी इतनी बुरी पोजिशन है कि वो नहीं कर सक रहा। ऐसे में अगर कोई ये बेचारा उजरा टूटा फूटा आदमी अगर आपके पास मोटरसाइकिल या कार बनाने के लिए आता है और आप बोलोगे यार आज तो बस अब नहीं आता तो मना करते हैं, या मतलब ईमानदारी से काम करें, जो लगाया है जो दिया है उसी की बिलिंग करें, और एक वाजिबी किस्म की अपनी मजदूरी लें।
सही फरमाया।
और मतलब उसको मतलब कि उसको खुशहाल करके भेजें कि मतलब आगे जाकर फिर ये मतलब कि चेन उधर गई।
माशाल्लाह, ये चंद बातें आपने समाप्त की आज के, ये आपने चीज़ें, ये वीडियोज आपने देखी कि किस तरह का मामला ये हुआ। इख्तिताम पर हमारे किस तरह बुजुर्गान दीन के दिलों में खैरख्वाही का जज्बा हुआ करता था। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, एक बार आप रज़ी अल्लाह तआला ने अपने गुलाम को घोड़ा खरीद कर लाने का हुक्म दिया, तो 300 दिरहम में इसका सौदा करके आ गया। जब वो घोड़ा आया तो आपने उसके मालिक को देख कर कहा कि ये तुम्हारा घोड़ा तो 300 दिरहम से ज़्यादा का है, अल्लाह अकबर, क्या तुम इसे 400 में बेचोगे? मालिक ने कहा कि जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर आपने कहा कि ये 300 दिरहम से भी ज़्यादा मालियत का है, क्यों आप 100 दिरहम बढ़ाते बढ़ाते आपने 800 दिरहम के अंदर तो समझे कि घोड़ा उससे खरीदा। आप रज़ी अल्लाह तआला से इसका सबब पूछा गया तो आपने फरमाया कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से हर मुसलमान के साथ खैरख्वाही करने की बयात की है।
असल में इसमें एक और हदीस में आपको जाते तो सुना दो।
जी जी,
माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारी हदीस, इन्होंने बयात की थी और उस बयात पर अब अमल कर रहे हैं।
अमल कर रहे ऐसे ही
कि मैं मुसलमान के साथ खैरख्वाही कर रहा हूँ, और यकीनन ये इनका बस कमाल के हैं, सहाबी तो होता ही कमाल का है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसमें एक हदीस से पाक है कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए वही पसंद करता है।
सही।
ये जवामीउल कलीम हदीस में इसको शुमार किया, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इरशादात जो के मुख्तसर है मगर इनके माना बहुत ही गहरे, जैसे इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये भी इसी जवामीउल कलीम मजमून के तहत हदीस को लिया गया। और जैसे कि ये आप रिवायत पढ़ते होंगे कि इंसान को उसने इस्लाम से ये भी है कि वो ला यानी कामों को तर्क कर दे, इसको भी जवामीउल कलीम हदीस में लिया गया है, यानी वो हदीस के जिसके लफ्ज कम है लेकिन माना बड़े गहरे हैं,
यानी अमन आलम के लिए ये
बहुत है। अब ये एक हदीस है ना कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता अपने भाई के लिए वही पसंद करता।
क्या बात।
अब आप बताए कि खत्म ना, अब इसके बाद अब आप डिटेल में जाए, मैं कैसे अपने लिए पसंद करोगे, मुझे धोखा दे, मुझे कोई फ्रॉड करे, डंडी मारे, मिलावट करे, या मेरे पर जुल्म करे, मेरे कुछ पर ज्यादती करे, मेरी गिब्बत करे, मेरे से झूठ बोले, मुझसे मतलब के इस तरह की कोई भी अब ले, अब पूरी मजा में पूरी पूरी फहरिस्त बना लें।
ऐसा ही
तो, नहीं मैं अपने लिए नहीं पसंद करता, तो मोमिन वो जो अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक फरमान ऐसा है कि अगर इस पर उम्मत अमल करना शुरू कर देना तो दुनिया के मतलब यूं समझे कि अमन ही अमन और मसाइल आपको हल ना हो तो फिर आप कहिएगा इस एक फरमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की जरूरत है। मोमिन जो अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए وہی پسند کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, نماز کی پابندی ضرور رکھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ تیری رحمت ہو عافیت میں رکھنا, غلطی نہ ہو جو پچھتا ہوں مجھ کو کیا پرکھنا.